बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की, श्रील गदाधर पंडित की जताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और दरअसल कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको अपना हृदय व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इससे सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है श्रोता के और बोलने वाले के अंदर। तो जिस तरह जब भगवद गीता प्रारंभ हुई थी तो अर्जुन ने कृष्ण को कुछ बोला था, कि वे फतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम संस्थते हस्ता त्वाक चाय परिधायते। तो अर्जुन ये बोल रहे थे कृष्ण को कि हे कृष्ण, अपने सभी मित्र संबंधियों को अपने सामने युद्ध में देखकर मेरे शरीर में क्या रोमांच हो रहा है और मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि आग जल रही है। तो हालांकि आप सब अपोजिट पार्टी नहीं है पर फिर भी मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था यहां पर बैठे हुए कि आप सबके सामने बोलने के लिए मेरे को बहुत संकोच हो रहा था। पर इसलिए कुछ भी शुरू करने से पहले मैं सभी वैष्णव से और वैष्णवियों से प्रार्थना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं कुछ बोल सकूं। और विशेष रूप से इसके लिए रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुझे अनुमति दें ताकि मैं कुछ बोल सकूं। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का और श्रील गदाधर पंडित जी का तेरह भाव दिवस है और आज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दसवें अध्याय के 17 से 28 श्लोक तक भी हमें लेने हैं। तो जैसे हमेशा कहते हैं कि जो बेस्ट है उसको लास्ट में बचा के रखना चाहिए, इसलिए हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित की जो गुणगान है, जो उनकी ग्लोरीज है, उसको हम लास्ट में बचा के रखेंगे बेस्ट को, क्योंकि पुस्तक भागवत से व्यक्ति भागवत ज्यादा महान होता है। तो व्यक्ति भागवत की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले पुस्तक भागवत से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है 17 से 28 तक, तो इसमें 17 से लेकर 27 तक कोई तात्पर्य नहीं है, सिर्फ 28 में भी तात्पर्य है। तो इसलिए पहले हम केवल इसका अनुवाद पढ़ लेंगे, तो आप सुन सकते हैं इसके अनुवाद को। हे राजन, जब वृतासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, मरुतों, ऋभुओं, साध्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से देदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असहाय था। सैकड़ों हजारों असुर यक्षों, राक्षसों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमुची, शंबर, अनवरा, द्विमूर्धा, ऋषभ असुर, हयग्रीव, शंखशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर सर्वणा भूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिध, बाण, प्रास, मुदगर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। वर्षा, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघनी एवं भूषंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। जिस प्रकार घने बादलों से आकाश के छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्तलाद्व से आकाश में इन हथियारों को काट कर खंड खंड कर दिया। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चूक गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर वृक्ष तथा पत्थर फेंकने प्रारंभ कर दिए, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब वृतासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहां तक कि वृक्ष पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके और अशक्त बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में युद्ध, तो इसमें जब ये शुरू हुआ था तो शुरू इस प्रकार हुआ था कि किस प्रकार भगवान भेजते हैं देवताओं को दधीचि के पास कि आप हमें अपना शरीर दे दो। और जब दधीचि ये सुनते हैं, क्योंकि हर भक्त ये चाहता है कि उसको कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, तो देवताओं से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, कुछ दिव्य ज्ञान लेने के लिए दधीचि क्या करते हैं, उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा आपको। पर उसके बाद दधीचि धीरे धीरे करके इस पर मान जाते हैं और फिर विश्वकर्मा क्या करते हैं, दधीचि की हड्डियों से, उनके शरीर से एक अस्त्र तैयार करते हैं जिससे वो असुरों का वध कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रसंग वही चलता आ रहा है कि किस प्रकार जो देवी देवता, जैसे देवी देवताओं के बीच में जो देवी देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई, ये हमेशा ही चलती रहती है। तो किस प्रकार यहां पर असुरों ने क्या किया, कोशिश की कि जो देवी देवता है उन पर आक्रमण करना शुरू किया, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर चारों तरफ से वर्षा कर रहे थे अस्त्र शस्त्रों की। और जब उनके पास अस्त्र शस्त्र खत्म हुए तो उन्होंने पेड़ और क्या है जो वृक्ष के साथ साथ उन्होंने जो पर्वत की श्रृंगाएं हैं, जो पर्वत की जो पत्थर हैं और जो उनकी चोटियां हैं, वे उठा के फेंकनी शुरू कर दी। पर जब उन्होंने देखा कि देवी देवताओं पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो वे बहुत भयभीत हो गए, घबरा गए। तो इसके बाद का ये प्रसंग है 28वां, जो सब आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, कृतः कृतः देव गणेषु दैत्यः, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु, शूद्रः प्रयुक्ता उशति रुक्ष वाचः, सर्वे प्रयासा भवन विमोघा, कृतः कृता देव गणेषु दैत्यः, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु, शूद्रः प्रयुक्ता उशति रुक्ष वाचः, सर्वे प्रयासा भवन विमोघा, कृतः कृता देव गणेषु दैत्यः, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु, शूद्रः प्रयुक्ता उशति रुक्ष वाचः। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सर्वे समस्त प्रयासः प्रयत्न अभवन हो गए विमोघा निष्फल, कृताः किया हुआ, कृताः पुनः किया गया, देव गणेशु देवताओं में, दैत्य है असुरों द्वारा, कृष्ण अनुकूलेशु जो श्री कृष्ण द्वारा सदैव रक्षित है, यथा जिस प्रकार महत्सु वैष्णवों को, शूद्र है तुच्छ मनुष्यों द्वारा, प्रयुक्त उक्षति प्रतिकूल, रूक्ष कठोर, वाच शब्द। अनुवाद कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। जब कुछ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचन का व्यवहार करते हैं, तो निष्फल वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के प्रयास निष्फल हो रहे थे। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। बंगला में कहावत है कि गीद के कोसने से गाय नहीं मरती। इसी प्रकार कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों के श्राप निष्फल रहे। हरे कृष्णा। तो इस प्रसंग में यहां पर दो चीजों की चर्चा हो रही है। सबसे पहला एक्यूजेशन, आरोप, कि किस प्रकार जब असुर लोग भक्तों पर आरोप लगाते हैं तो उसका भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसका असर यह होता है कि भक्त लोग भगवान के और समीप और पास आ जाते हैं। और दूसरा यहां पर चर्चा की जा रही है कि कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इन दो चीजों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है। और दरअसल इस रहस्य को समझने के लिए भक्तों को भगवान की कृपा का विज्ञान समझना पड़ेगा। और अगर कृपा का विज्ञान समझ भी गए तब भी इसको समझना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। जिस प्रकार जब हम कृष्ण लीला में किस तरीके से देखते हैं कि जब अघासुर नामक राक्षस आया था, तो अघासुर राक्षस के आने पर भक्तों को लगा, जो वहां पर ग्वाल बाल थे उनको लगा कि नया प्लेग्राउंड है हमारे लिए, तो चलो टहल कर आते हैं। तो जब वो गए अघासुर के पेट के अंदर, तो दरअसल वह एक अंधेरी गुफा थी जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। और जब ग्वाल बाल जब गए तो वो अनकॉन्शियस हो गए, मूर्छित हो गए सब। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जब कालिया नामक सर्प आया था वृंदावन में, और जब वो यमुना में रहने लगा, तो यमुना में केवल उसके रहने मात्र से जो यमुना का जल था वो विषैला हो गया। और जब ग्वाल बालों ने, गायों ने उस जल को पिया, तो पीने मात्र से क्या हुआ, वे मूर्छित हो गए। तो अगर जब हम इन स्टोरीज को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भगवान कृष्ण के होते हुए भी भक्तों की हार हो रही है, कि भगवान कृष्ण वहां पर प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तब भी क्या है, भक्त लोगों पर ये कठिनाइयां आ रही हैं, ये दुख आ रहे हैं। इसके बाद जब भगवान कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार अघासुर के मुख में उनके भक्त जा चुके हैं, ग्वाल बाल जा चुके हैं, और जब भगवान गए तो देवी देवताओं जो ऊपर से देख रहे थे भगवान को, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अलास अलास, हाय हाय, ये क्या हो गया, कि उन्हें लगा कि हमने इनको तो खो दिया था, ग्वाल बालों को, अब हम कृष्ण को भी खो बैठे। परंतु ये भगवान की एक टेक्निक है जिसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को अपने समीप लाते हैं, अपने पास लेके आते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार जिस हिरण्याक्ष का जब युद्ध हो रहा था भगवान भरा से, या हिरण्यकश्यप का युद्ध हो रहा था नरसिंह देव से, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताएं की। तो हम देखते हैं किस प्रकार जब हिरण्यकश्यप का युद्ध हो रहा था, तो बाह्य रूप से देखने में लग रहा था कि भगवान हार रहे हैं। जब हिरण्याक्ष का, जो अगर हम प्रसंग पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का वराह देव से युद्ध हो रहा है, तो उसमें बताया गया कि वरा, भगवान वराह के शरीर से खून निकल रहा था हिरण्याक्ष के प्रहारों से, और सारे देवी देवता देख के हैरान थे कि ये क्या हो गया, हमें तो भगवान को इसलिए बुलाया था कि भगवान आए और इस राक्षस का वध करें, पर ये तो उल्टा ही हो रहा है यहां पर। परंतु दरअसल उस समय लग रहा था कि भगवान हार गए, परंतु भगवान हारे नहीं थे। इसे आचार्य समझाते हैं कि ये उसी तरीके से है जिस प्रकार एक बिल्ली एक चूहे के साथ कभी कभी खेलती है, किस प्रकार खेलती है कि वैसे मौका देती है भागने का, भाग। और जब वो चूहा भागने की कोशिश करता है तब बिल्ली उसे जाके क्या करती है, दबोच लेती है, पकड़ लेती है। जिस प्रकार हम स्पोर्ट्स में अगर देखें तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, मान लीजिए आप एक मैच देखने गए एक स्टेडियम में, सॉकर का मैच, फुटबॉल का मैच था, और उसमें क्या है कि एक टीम गोल पे गोल की जा रही है और दूसरी टीम कुछ नहीं कर रही, तो उस मैच में क्या किसी को आनंद आएगा? 10-0 से स्कोर चल रहा है, नहीं। या फिर कोई अगर कोई और मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, और मैच के अंदर जो एक टीम है वो दूसरी टीम पर भारी ही पड़ी हुई है, पहले 10 ओवर में सबको आउट कर दिया और पहले 3 ओवर में जीत गई, तो हम लोग जब वो मैच देख के आएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ जीत गए वो, पर मजा नहीं आया, वो एक्साइटमेंट नहीं थी, ठीक है जीत गए। इसी तरीके से भगवान अपनी लीलाओं में ये एक्साइटमेंट लाने के लिए, ये इंटरेस्ट लाने के लिए, भक्तों के जीवन में रोमांच लाने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सारी इस एक्साइटमेंट से, इस रोमांच से भरी हुई हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि किस प्रकार जब हिरण्यकश्यपु, जब नरसिंह देव स्तंभ में से प्रकट होते हैं तो हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। पर दरअसल बताया जाता है कि भगवान नरसिंह देव मध्याह्न के समय, दोपहर के समय स्तंभ में से प्रकट हुए थे, और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कब किया था? शाम को। मतलब 5-6 घंटे तक वो युद्ध चलता ही रहा। आप देखिए कोई युद्ध अगर हम देखने जाएं और युद्ध शुरू होते ही अगर एक ही पंच में अगर जो अपोजिट पार्टी वाला दूसरे को मार दे तो उसमें क्या मजा आएगा। कभी हम देखते हैं क्राउड को, क्राउड पीछे से बोलता है कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो वो एक्साइटमेंट जो है वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो किस प्रकार नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को 6 घंटे तक उससे युद्ध करते रहे करते रहे करते रहे। जिस प्रकार हम अपने मंदिर में देखते हैं हमारे नित्यधाम प्रभु जी प्ले करते हैं नरसिंह देव का, तो किस प्रकार जब वो प्ले हुआ था शुरू, तो प्ले शुरू होने के बाद जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया स्तंभ पर, तो नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, फिर युद्ध किया हिरण्यकश्यपु से, उनके साथ जो योद्धा थे उनसे युद्ध किया। अब सोचिए अगर प्ले में यह दिखाया था कि नरसिंहदेव स्तंभ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही हिरण्यकश्यपु को पकड़ के मार दिया, तो भक्तों को क्या मजा आता उसमें, भक्तों को सिर्फ देख के चले जाते उसको, उसमें जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो गया। पर वही जीवन में, भक्तों के जीवन में वो एक्साइटमेंट लाने के लिए, वो रोमांच लाने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपनी लीलाओं को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से भगवान अपने जीवन में भी ऐसे एक्साइटमेंट लाते हैं और अपने भक्तों के जीवन में ही ऐसा एक्साइटमेंट लाते हैं। तो एक प्रश्न यहां पर उठता है कि भगवान आखिर अपने भक्तों की रक्षा करते ही क्यों हैं? क्योंकि भगवान के जैसे बताया था कि भगवान पार्शल तो है नहीं, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं पर क्यों करते हैं? दरअसल बताया गया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भक्तों का शरीर है दरअसल में वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है, वो भगवान की संपत्ति है। इसलिए बताया गया शास्त्र में साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो अहम, कि भगवान यहां पर बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं और मेरे जो भक्त हैं मेरे हृदय में रहते हैं, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं और मेरे भक्त जो है वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भगवान भगवत गीता में भी सेम चीज कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपदंते तान सते बजामे हम, कि मेरे भक्त मुझे शरणागत होते हैं और मैं अपने भक्तों को शरणागत होता हूं। इसी कारण से भगवान जो भक्त हैं अपने भक्त, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, इसीलिए भगवान भी अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। तो इसलिए बताया गया कि जो भगवान है, भगवान और भक्तों के बीच में ये जो संबंध है ये हमेशा बना रहता है, और इसी संबंध के कारण भगवान क्या है, अपने भक्तों को बहुत प्रिय हैं। तो यहां पर साथ साथ में बताया गया, जिस तरह हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि किस प्रकार हमें अगर कोई वस्तु प्रिय होती है तो हम भी उस वस्तु के लिए क्या है, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से भगवान को भी जो चीज प्रिय है, भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं, बहुत विशेष है उनके लिए, तो भगवान उनके लिए भी क्या करते हैं, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बताया गया कि जो भगवान भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध भगवान के प्रति किए हुए अपराध से ज्यादा बड़ा है और भक्तों के प्रति की गई सेवा भगवान के प्रति की गई सेवा से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जो भक्त हैं वो भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की संपत्ति है और हर व्यक्ति अपने संपत्ति की रक्षा स्वयं करता है। तो यहां पर एक चीज हम लोग सोच सकते हैं कि जिस तरीके से इस प्रसंग में दिखाया जा रहा है और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार वृतासुर का वध हो जाएगा, जिस तरह कृष्ण जी भी अपने एक लेक्चर में एक बार बता रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने अपने दो भक्तों की हत्या करवा दी केवल एक इंद्र की रक्षा के लिए, जो कि उनका मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त भी नहीं है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने आखिर वृतासुर के अगेंस्ट भगवान उनकी क्यों हत्या करवाना चाहते हैं। तो दरअसल हम ये समझ सकते हैं इससे कि भगवान के लिए अगर भगवान किसी के अपने भक्त की हत्या भी करवाते हैं तो उसमें भी उस भक्त की विजय होती है। भगवान बाह्य रूप से उस भक्त की हत्या करवा देते हैं पर उसकी विक्ट्री, उसकी विजय किस प्रकार से होती है कि भगवान उसे अपने पास अपने धाम में बुला लेते हैं, इस प्रकार से उसकी विजय होती है। इसलिए बताया गया कि जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भगवान के क्रियाकलापों को समझ ही नहीं सकते कि भगवान ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। हमारे जीवन में भी काफी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। परंतु इसमें भगवान के कुछ विशेष अरेंजमेंट्स होते हैं हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, ताकि हमें शुद्ध कर सके। देखिए जिस तरह हम महाभारत में देखते हैं कि भगवान ने अपने एक भक्त अभिमन्यु की रक्षा की उसे मरवाकर, और दूसरे भक्त अर्जुन की रक्षा की उसे विजय दिलाकर, तो दरअसल अगर देखा जाए तो दोनों की ही विजय हुई। दोनों की विजय किस प्रकार से हुई, क्योंकि दोनों ने अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। अभिमन्यु ने भी अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पित किया और अर्जुन ने भी अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पित किया, इसीलिए बताया जाता है कि दोनों की ही विजय हुई। जिस तरीके से हम लोग ध्रुव महाराज, जैसे आज का जो प्रसंग है इसे हम ध्रुव महाराज के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। जैसे आज के प्रसंग में बताया गया है, यहां पर 17-28 में बताया गया है कि किस प्रकार जो असुर गण थे वे देवी देवताओं पे बाणों की आक्रमण कर रहे थे, वृक्षों से और चट्टानों से आक्रमण कर रहे थे। उसी प्रकार ध्रुव महाराज के लिए भी बताया गया है भागवतम के चौथे स्कंद के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया कि जब यक्षों और ध्रुव के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जब ध्रुव महाराज ने, यहां पर बताया गया कि स्वर्ग लोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं तो वे तुमूल ध्वनि करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तो दरअसल बताया जाता है कि उस समय जब ध्रुव महाराज अकेले थे, जब यक्षों से युद्ध कर रहे थे और यक्षों की संख्या 125,000 थी और हर यक्ष एक बारी में 6 बाण छोड़ रहा था, तो इसका मतलब कितने बाण थे, लगभग भी 8-10 लाख बाण एक बारी में आ रहे थे। और बताया जाता है कि यक्ष लोग हर 10 सेकंड के बाद दोबारा बाण छोड़ रहे थे, इसका मतलब वही 10 लाख बाण हर 10 सेकंड के बाद छोड़े जा रहे थे। तो जब सिद्ध लोकवासियों ने देखा ध्रुव महाराज की स्थिति में, क्योंकि ध्रुव महाराज नजर ही नहीं आ रहे थे बाणों के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, चिल्लाना शुरू किया, हाय हाय ये क्या हो गया, अब ये ध्रुव महाराज जो मनु के पौत्र थे ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, यहां पर रूप गोस्वामी को कोट करते बता रहे हैं कि ना केवल समस्त भक्त गण परमेश्वर द्वारा सुरक्षित हैं, वन समस्त देवता, यहां तक कि सामान्य मनुष्य भी, यहां पर बता रहे हैं कि किस प्रकार ना केवल कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यहां तक कि सिद्ध लोकवासी जो उच्च लोक के वासी भी है वह भी भक्तों के लिए शुभकामनाएं करते हैं, वह भी चाहते हैं कि भक्तों की रक्षा हो, वह भी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। और यहां पर जिस तरह देवताओं के इस इंसिडेंट में आता है, तो बता रहे हैं यहां पर कि जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं कि कभी कभी सूर्य डूब जाता है, तो जब सूर्य को डूबते हुए देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि सूर्य की हार हो गई, ये तो सूर्य की हार है। पर दरअसल वो सूर्य की हार नहीं है। जब सूर्य डूबता है पर उसके बाद जब उदय होता है तो अपने पूरे प्रकाश के साथ उदय होता है। तो अगर एक्सटर्नल रूप से अगर देखा जाए तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त हार गए या वो भक्ति में उन्नति नहीं कर रहे, परंतु ये भगवान के विशेष अरेंजमेंट्स होते हैं, हमें इस पे संशय नहीं करना चाहिए। वह भक्त दोबारा उठेंगे और प्रकाशित होते हुए दोबारा बाहर निकलेंगे। तो इसी प्रकार यहां पर बताया गया है, यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि इसी तरीके से भगवान के जो भक्त हैं इनकी कभी हार नहीं होती। इसके साथ साथ जो इंग्लिश वर्जन है भागवतम का, इसमें एक लाइन ज्यादा ऐड है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट वॉज अ फाइट एंड इन ऑल फाइटिंग एक्टिविटीज देयर आर रिवर्सेस। यहां पर बता रहे हैं क्योंकि ये युद्ध है और हर युद्ध में क्या है, रिवर्सेस होते हैं, विपरीत स्थितियां आती ही हैं। तो विपरीत स्थितियों से क्या है, भक्तों को कभी घबराना नहीं चाहिए, उन्हें ये विश्वास रखना चाहिए, ये धैर्य रखना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, रक्षति इति विश्वासो। जिस प्रकार मैं मायापुर में था तो एक भक्त वहां पर एक कथा कर रहे थे, तो बता रहे थे कि एक बार जब उन्होंने वैसे ही एक एग्जाम्पल लिया कि एक बार एक राजधानी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसके सामने से एक पैसेंजर ट्रेन निकल के जा रही थी, तो पैसेंजर ट्रेन राजधानी पर हंस रही थी, देखो इसके इतने पैसे खर्चने का क्या फायदा हुआ, ये तो पीछे रह गई, मैं तो आगे निकल गई। तो वो भक्त समझा रहे थे कि कभी कभी हम भक्तों के अंदर भी यही चीजें देखते हैं, हम किसी भक्त को देखते हैं कि वो उसकी भक्ति रुक गई है, ये वो भक्ति नहीं कर पा रहा, तो हम उस पर हंसते हैं कि यार इसका तो फॉल हो गया, ये तो पतन हो गया इसका। पर दरअसल उसका पतन नहीं हुआ, जब वो राजधानी शुरू होगी तो पैसेंजर ट्रेन से किलोमीटर आगे निकल जाएगी। उसी तरह जब तुच्छ व्यक्ति देखते हैं, जब सामान्य व्यक्ति देखते हैं कि कोई भक्त भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे या किसी कारणवश अपने अनर्थोवश प्रगति नहीं करे, तो उन पर हंसते हैं, वे उनका परिहास करते हैं। परंतु दरअसल क्या है, जब वो भक्त भक्ति करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही तीव्रता से आगे निकल जाएंगे। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और हिस्टोरिकली भी अगर देखें, जैसे श्रीमद् भागवतम से अगर देखें तो काफी सारे इंसिडेंट्स हमें मिलते हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है। जैसे पांडवों का अगर हम देखें तो पांडवों को किस तरीके से जब 12 वर्ष के लिए उनको अज्ञातवास में जाना पड़ा, तो वहां पर कुछ लोग उपस्थित अगर हो, अगर मतलब कुछ लोग अगर सोचें कि जिन्होंने इसके बारे में सुना हो कि कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं, तो वो ये लोग सोचेंगे कि भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र तुम ऐलान कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अगर वो देखें, सोच रहे होंगे कि ये पांडव किस प्रकार के भक्त हैं कि एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, 12 साल तक उनको कष्ट उठाने पड़े। अगर बाह्य रूप से देखें तो दुर्योधन से उनकी क्या हुई, हार हुई थी, दुर्योधन के सामने वो हार गए थे पांडव, परंतु क्या है, भगवान ने उनको विजय प्राप्त करवाई। यही चीज हम लोग रुक्मिणी जी के इंसिडेंट्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार जब रुक्मिणी जी ने, जो भगवान की होने वाली भार्या थी, उन्होंने भगवान को पत्र भिजवाया ब्राह्मण के हाथ कि आप आइए और मुझे किडनैप कर लीजिए, मुझे उठाकर ले जाइए। तो जब उनको भगवान का संदेश वापस नहीं आया तो वो सोचने लगी रुक्मिणी जी कि लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है, लगता है मैंने जो पार्वती जी हैं या शिव हैं उनके प्रति कोई अपराध कर दिया है, या मुझसे कोई गलती हो गई है कृष्ण के प्रति जिससे वो मुझे लेने नहीं आ रहे। तो दरअसल भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को लास्ट मोमेंट तक चेक करते हैं कि इनकी, इस भक्त की मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी दृढ़ निष्ठा है उनकी मेरे प्रति। तो भगवान ने रुक्मिणी जी के प्रति भी यही किया। जब रुक्मिणी जी घर से निकली तो भगवान लेने नहीं आए, उठाने नहीं आए। रुक्मिणी जी ने सोचा अच्छा अब मैं मंदिर में जा रही हूं तो शायद भगवान वहां से उठा लेंगे, नहीं आए। रुक्मिणी ने सोचा चलो मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूं अब भगवान उठाने आ जाएंगे, नहीं आए। पर भगवान ने क्या किया, लास्ट मोमेंट तक उस एक्साइटमेंट को बनाए रखा और भगवान आखिरी मोमेंट पर आए और सबके सामने शिशुपाल, रुक्मिणी और सभी जो बड़े बड़े योद्धा थे, जरासंध, सब लोग खड़े थे और उनके बीच में से रुक्मिणी जी को उठा के ले गए। अब आप सोचिए जब रुक्मिणी जी घर से निकली होंगी और तब अगर भगवान उनको उठा के ले जाते तो क्या वो एक्साइटमेंट रहता, क्या भक्त का वो प्रेम, क्या भक्त उस समय भगवान से वो प्रार्थना कर पाते कि प्लीज हेल्प मी कृष्णा, मेरी रक्षा कीजिए आप, मेरी सहायता कीजिए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, नहीं कर पाते। जैसे हम मुचुकुंद के इतिहास में देखते हैं कि मुचुकुंद गुफा में सो रहे थे। कभी कभी भक्तों को शक होता है कि भगवान ने कहा अंतकाले च माम एवं स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है, पर अगर सोते सोते मृत्यु हो गई तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारा क्या होगा। तो हमारे कुछ आचार्य बताते हैं कि दरअसल जो भगवान थे वो कौन भाग रहे थे, काल्य वन से डर के नहीं भाग रहे थे भगवान, दरअसल मुचुकुंद जो उनके शुद्ध भक्त थे उनसे मिलने के लिए इतने पागल थे भगवान कि नंगे पैर भाग रहे थे। जिस तरह सुदामा से मिलने के लिए भाग रहे थे उसी प्रकार नंगे पैर भगवान भाग रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो हम ये जान सकते हैं कि अगर ऐसी अवस्था भी हमारे जीवन में आती है कि हम भगवान को भूल जाएं, पर अगर हमने भगवान की भक्ति की है, अगर हमारा भगवान से प्रेम है, तो भगवान हमें कभी नहीं भूलते। तो दरअसल समझने की बात इसमें यही है कि भगवान केवल अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए ये जो टाइम लिमिट है लास्ट सेकंड तक भगवान को रोक कर रखते हैं, लास्ट सेकंड तक, और आखिरी मोमेंट में उनकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि किस प्रकार जब अर्जुन और जयद्रथ के बीच में जब वार्तालाप हुआ, अर्जुन ने बोला कि किस तरह अर्जुन ने जब शपथ ली थी कि अगर सूर्य अस्त होने तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो देखिए अगर अर्जुन ने आते ही सबसे पहले पहला काम यही किया होता कि जयद्रथ को मार दिया होता तो क्या अर्जुन का इतना ख्याति फैलती, नहीं फैलती। पर भगवान ने यहां पर क्या दिखाया, लास्ट सेकंड पर अर्जुन की मदद नहीं की, बियॉन्ड लास्ट सेकंड, सूर्य अस्त होने के बाद भी भगवान ने उनकी रक्षा की, अपने मिराकल से, अपनी शक्तियों से भगवान ने अर्जुन की रक्षा की और अर्जुन को बचाया उन्होंने अग्नि प्रवेश करने से। तो ये भगवान की स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं ताकि भक्त उनके समीप आ सके, उनके बहुत पास आ सके। तो जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे मंदिर में अमोघ लीला प्रभु आए थे तो वो भी इसी से संबंधित बता रहे थे कि किस प्रकार हम हिंदी मूवीज में देखते हैं कि हिंदी मूवीज में जब तक कोई ऐसा खतरा हीरो नहीं उठाता हीरोइन को बचाने के लिए तो वो जो पिक्चर है वो हिट नहीं होती, वो पिक्चर फ्लॉप मानी जाती है। आप सोचिए पिक्चर शुरू हुई, हीरो हीरोइन का आपस में प्रेम हुआ, उनके माता पिता एग्रीड हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया, एंड दे लिव्ड हैप्पीली बस और 5 मिनट में मूवी खत्म हो गई, तो क्या वो पिक्चर चलेगी, कोई देखने नहीं जाएगा, लोग कहेंगे बोगस पिक्चर है। तो पर पिक्चर कौन सी चलती है जिसमें बहुत खतरा होता है, बहुत खतरा, बहुत एक्साइटमेंट होता है। जब हीरो इम्पॉसिबल डेंजर्स उठाता है अपने हीरोइन की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और किस प्रकार खतरों झेलते हुए उसको निकाल के ले जाता है। तो जो रुक्मिणी जी का इंसिडेंट है वो ऐसा ही इंसिडेंट है कि हर कोई अगेंस्ट था उसके, तो किस तरह उन्होंने रुक्मी से युद्ध किया, किस प्रकार उन्होंने जरासंध से युद्ध किया, किस प्रकार उनको बचा कर ले गए। तो ये जो इंटरेस्ट है ये बनाने के लिए भगवान अपने भक्तों को रोक कर रखते हैं, उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाते हैं। तो दरअसल हमारे अंदर भी एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आखिर इतना करते ही क्यों है, छोड़ दें भगवान इतना, कि भगवान थोड़ा तरस खा लेना हमारे पे, भाई हमारे से नहीं इतनी परीक्षा दी जाती, थक गए भगवान परीक्षाएं देकर, अब भगवान कुछ शॉर्ट में कर दे हमारे लिए। तो बताया कि दो कारण हैं जिसलिए भगवान अपने भक्तों को ये चेक करते हैं। सबसे पहला कारण कि भगवान अपने जो भक्त की श्रद्धा देखते हैं, किसकी श्रद्धा मुझ में कितनी है, कितना फेथ है इसका मुझ में, भगवान ये चेक करते हैं कि किस किस सिचुएशन में मुझे शरणागत रहता है। और दूसरा भगवान करते हैं अपने भक्त के प्रेम को और उसके गुणगान को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए। जैसे श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंद में बताया गया कि एब्सेंस मेक्स अ हार्ट गोस फाउंडर, कि अगर हमें किसी से एब्सेंस हो, किसी से एब्सेंस को कहते हैं विरह, अगर हमें किसी चीज से, तो वह विरह क्या होता है, हमारे प्रेम को बढ़ाता है। जैसे सभी भक्तों का अनुभव होगा कि जब हम निर्जला एकादशी रखते हैं तो उस एकादशी रखने के बाद वो चपाती से जो हम विरह महसूस कर रहे होते हैं, वो खाने से जो हम विरह महसूस कर रहे होते हैं, वो कितना बड़ा होता है, मतलब वो चपाती के नाम से ही हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, इतना वो विरह बड़ा होता है केवल चपाती के बारे में सोचते ही। उस समय हम ये सोच रहे थे कि कोई सूखी चपाती मिल जाए नमक के साथ, मैं वो भी खा लूंगा। परंतु अगर हमारा पेट भरा हो बिल्कुल और हमें हमारे सामने कोई छप्पन भोग भी रा दे तो वो मजा नहीं आएगा, उसको देख के ही हमारा मुंह फिर जाएगा कि नहीं खाना नहीं है। तो दरअसल भगवान वो जो एब्सेंस क्रिएट कर देते हैं हमारे अंदर, वो खालीपन ला देते हैं, और उसके बाद जब भगवान हमारे पे कृपा करते हैं तो हम भगवान की कृपा को रिलिश कर पाते हैं। तो जिस तरह से हमें यहां पर चर्चा की कि किस प्रकार भगवान ने अभिमन्यु और अर्जुन दोनों की रक्षा की, दरअसल एक और उदाहरण आता है परीक्षित महाराज का, कि परीक्षित महाराज भगवान ने उनकी दो बार रक्षा की। सबसे पहली उनकी रक्षा की जब वो उत्तरा के गर्भ में थे। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणों का अस्त्र है, परंतु भगवान ने परीक्षित महाराज की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की परंतु ब्राह्मणों के श्राप से रक्षा नहीं की। परंतु अगर हम डीपली से देखें तो दोनों ही सिचुएशन में भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की है, उनके प्रेम को बढ़ाया है, उनके ग्लोरीज को बढ़ाया है। कि किस प्रकार भगवान ने परीक्षित महाराज को श्रवण आचार्य के रूप में उनकी ख्याति को बढ़ाया, तो ये भगवान के स्पेशल अरेंजमेंट थे। भगवान चाहते तो उनकी रक्षा भी कर सकते थे, भगवान के हाथ में सब कुछ था। जब भगवान ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकते हैं तो भगवान एक ब्राह्मण के श्राप से रक्षा क्यों नहीं कर सकते। बताया जाता है कि हम एक बार राधा गोविंद महाराज की कथा को सुन रहे थे, तो उसमें राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जब जन्मेजय थे, जो परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे, उन्होंने ये शपथ ले ली कि मैं सर्प जाति को ही खत्म कर दूंगा, ना सर्प जाति रहेगी और ना सर्प काटेगा। तो उन्होंने इस क्रोध के साथ सभी सर्पों को मारना शुरू किया और करोड़ों सर्प मार दिए, पर तक्षक को नहीं मारा अभी तक। तक्षक इंद्र की शरण ले चुका था, तो ब्राह्मणों से उन्होंने बुलवाकर इंद्र को भी साथ में ही खींच लिया यज्ञ कुंड में। तो इंद्र ने क्या किया, तक्षक को रस्ते में ही छोड़ दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम अपनी रक्षा खुद करो। तो फिर कुछ ब्राह्मणों ने आकर उसको समझाया जन्मेजय को कि तुम ये अत्याचार छोड़ दो, ये भगवान के स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, ये भगवान के अरेंजमेंट्स हैं जिससे भगवान परीक्षित महाराज की ख्याति को बढ़ाना चाहते हैं और परीक्षित महाराज के माध्यम से इस ज्ञान को सर्व लोगों को, सभी लोगों को देना चाहते हैं। तो ये भगवान के दरअसल स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं भगवान के अपने भक्तों की ख्याति को बढ़ाने के लिए, गुणगान को बढ़ाने के लिए। दरअसल अभी हम संडे लेक्चर के बाद एक भक्त हमारे पास आए तो वो कह रहे थे कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं पर भक्ति करने में बाधाएं आ रही हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भक्ति कर रहे हैं और बाधाएं आ रही हैं। बड़ी बात तो ये है बाधाएं आ रही हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। भक्ति कर रहे हैं बाधाएं आ रही हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर हम श्रीमद् भागवतम को उठा लें पहले स्कंद से आखिरी स्कंद तक और सभी भक्तों के, जितने भी वहां पर भक्त रहे हैं सभी के इंसिडेंट्स को, उनकी स्टोरीज को ले लें अगर हम लोग, तो कोई भी एक ऐसा भक्त नहीं होगा जिसने शांति से भक्ति कर ली, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं आया बिल्कुल शांति से। अगर हम चैतन्य लीला में भी देख लें, कोई ऐसा भक्त हो, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, किसी भी आचार्य को ले लें जिसके जीवन में कष्ट ना आया हो, सभी के जीवन में ये सिचुएशंस आई हैं। और उसके बाद भी हमारे अंदर एक आशा रहती है कि मैं भक्ति कर रहा हूं प्रभु जी कुछ ऐसे बताइए कि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने में हमारे जीवन में कष्ट ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, शांति से भक्ति हो जाए। तो देखिए शांति से भक्ति तो होती नहीं है, क्योंकि भक्ति करने के लिए, जैसे हम एक बार बहुत पहले राधानाथ महाराज का लेक्चर सुना था, तो राधानाथ महाराज में बता रहे थे कि वे एक बहुत बड़ी संस्था में गए और उस संस्था में दरअसल वो नटवर के पुजारी थे, मतलब वो नटवर की शिव जी की पूजा करते थे वहां पर। और शिव जी की पूजा करते हुए उन्होंने पूछा कि वहां पर कि आपके यहां पर सभी कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ इतना अच्छा चलता है, तो ये सब कैसे है। तो महाराज बता रहे थे कि वो जो वहां के आचार्य थे उन्होंने बताया महाराज को कि देखिए हम लोग शिव की पूजा करते हैं और आप लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, और कृष्ण क्या है, पूर्ण भगवान है, और जो शिव है ये पूर्ण भगवान नहीं है। तो पूर्ण भगवान होने के कारण वह क्या है, अपने भक्तों, क्योंकि वो जेलस लवर हैं पूर्ण भगवान होने के कारण, और वे अपने भक्तों को कहीं और नहीं देख सकते, इसलिए क्या है वे अपने भक्तों को तकलीफें देते हैं, डिफिकल्टीज देते हैं, परेशानियां देते हैं, इतनी परेशानियां देते हैं कि वो भक्त के लिए कुछ भी ना बचे, वो भक्त सिर्फ यही सोच ले कि सिर्फ मेरे लिए भगवान है और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है।
तो वो आचार्य बता रहे थे दूसरी संस्था के जो शिव के उपासक हैं, वो कह रहे हैं कि हम शिव की पूजा करते हैं इसलिए यहां पर बहुत अच्छी से चल रहा है, परंतु अगर हम कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दें तो जो समस्याएं आपके पास आ रही है वो समस्या हमारे पास आने लग जाएंगी। तो इस भय से वो कृष्ण की पूजा नहीं करते। परंतु जो भक्त हैं वो हमेशा हायर चाहते हैं, हाइएस्ट चाहते हैं, हाइएस्ट से कम उनको कुछ पसंद नहीं है, उन्हें सबसे उच्च चाहिए, सबसे ऊंचा है कृष्ण प्रेम। परंतु अगर हम सबसे ऊंचा चाहिए हमें, तो सबसे ऊंचा चाहने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत है ये इन टेस्ट को पार करना, इन माया के टेस्ट को पार करना। तो दरअसल ऐसा नहीं कि खाली हमारे जीवन में ही ये परीक्षाएं आ रही हैं, हमारे जितने भी आचार्य रहे, जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में अगर हम देखें किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जब झांसी में थे तो कितना नुकसान हुआ, प्रभुपाद जब बॉम्बे में पहुंचे तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को एक ही बारी में टिकट मिल गई, प्रभुपाद जी को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। जब प्रभुपाद जी बौरी में गए तो उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, उनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, उनके जीवन को उनको मारने के लिए वो कुछ लोग भागे थे, मारे कोशिश कर रहे थे मारने की। तो अगर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे आचार्य ग्रहे हैं, जितने भी हम भागवतम देखें, अगर हम गौर लीला देखें, तो सभी भक्तों के जीवन में कष्ट आए हैं, और ये कष्टों का केवल एकमात्र यही कारण है ताकि अपने भक्तों को, भक्तों के प्रेम को बढ़ा सकें। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से भगवान अपने भक्तों को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करते हैं, बाह्य रूप से रक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान अपने भक्तों को इंटरनली भी प्रोटेक्ट करते हैं, हृदय के जो अंदर जो हमारे असुर हैं उन असुरों से। हमारे हृदय के अंदर भी 6 असुर बैठे हैं। कौन कौन से 6 असुर हैं वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो दरअसल इन 6 असुरों की तुलना, 6 वीकनेसेस की, इन 6 कमजोरियों की तुलना 6 असुरों से की गई है। काम किस कौन से असुर का सूचक है? रावण का। रावण क्या था? बहुत कामी था। क्रोध, दंत वक्र, कि किस प्रकार वो क्रोध के कारण भगवान को मारने के लिए भाग रहे थे। लोभ, लालच, हिरण्याक्ष, किस प्रकार से इतने लोभी थे वो कि सब कुछ, धरती में से सारा सोना निकाल रहे थे। मोह, इल्यूजन, कुंभकर्ण, सिर्फ सोना उनको, बस सोए, उठे, खाए और फिर सो गए। मद, पागलपन, एरोगेंट, कौन थे? हिरण्यकश्यपु। और आखिरी द्वेष, ईर्षा, कौन थे? शिशुपाल। तो ये जो 6 असुर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 असुरों की तुलना की गई है इन 6 राक्षसों से, और ये राक्षस हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार इन 6 राक्षसों का वध क्या कोई देवी देवता कर पाया था? नहीं कर पाया था। इन 6 राक्षसों का वध करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को ही आना पड़ा था। उसी प्रकार इन हमारे हृदय में जो 6 राक्षस बैठे हैं, इन राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भक्तों को हमेशा यह सुरक्षित रहना चाहिए शास्त्रों के आधार पर कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। दरअसल एक व्यक्ति ने सक्सेस की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया, सक्सेस की डेफिनेशन बताई है कि अ सक्सेसफुल मैन इज अ पर्सन हु पासेस थ्रू फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर बट डजंट लीव हिज एंथुसियाज्म। कि एक कामयाब व्यक्ति वही व्यक्ति है जो दुख आने के बाद भी अपने उत्साह को नहीं त्यागे। बताया गया है कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस, डिफीट इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स विक्ट्री। कि जो हार है ये एक सीढ़ी है विजय की। तो इसलिए भक्त लोग कभी घबराते नहीं है और वो भगवान की कृपा पर हमेशा आश्रित रहते हैं। तो हम सभी को भी यही चाहिए कि हम भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हुए शास्त्रों के आधार पर ये जाने कि भगवान ने कहा है कि रक्षति इति विश्वासो, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान कह रहे हैं मां शुचः, डरो मत। हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है कि भगवान पे फेथ रखना है, श्रद्धा रखनी है। यह स्थितियां हमारे जीवन में आएंगी ही कि कभी कभी भगवान हमें फिजिकली हैंडीकैप बना देंगे, हमारे शरीर का रोम रोम दर्द करेगा। भगवान ऐसी स्थिति ला देंगे हमारे शरीर की कि यह स्थिति आ जाएगी कि हम भक्ति करें या ना करें बस, पर भगवान चेक करेंगे कि इस परेशानी के बाद, शारीरिक दुख के बाद क्या ये भक्ति छोड़ता है? नहीं छोड़ता। फिर भगवान क्या करेंगे, हमें मानसिक दुख देना शुरू करेंगे, फिर भगवान हमारे अहंकार को तोड़ना शुरू करेंगे, हमारे अहंकार को चूरा कर देंगे, बिल्कुल मसल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल चूरा कर देंगे पानी के समान। चेक करेंगे भगवान कि क्या अब भी मेरी भक्ति करता है ये, और जब हम इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो भगवान कहेंगे कि हेंस अप्रूव्ड, अब ये व्यक्ति पास है कि ये मेरे धाम में आ सकता है, अब ये व्यक्ति योग्य है मेरे धाम आने के, मेरी सेवा करने के। तो भक्तों को सिर्फ यही करना है कि भगवान के प्रति हमेशा फेथफुल बने रहें, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को हमेशा मेंटेन करके रखें, बनाए रखें, अपनी श्रद्धा को जाने ना दें। जिस तरह पहले जमाने में देखा जाता था, आजकल तो कम देखा जाता है, कि जो स्त्रियां थी जो बहुत लॉयल थी, चेस्ट वुमेन्स थी, मैं वैष्णवियों के बारे में नहीं कह रहा, जो मंदिर में आती हैं वो निश्चित रूप से चेस्ट हैं, पर बाहर के समाज में अगर देखा जाए तो पहले के जमाने में देखा जाता कि स्त्रियां जो वुमेन्स थी बहुत चेस्ट होती थी, कि अगर उनका विवाह हो गया उनके पति के साथ तो चाहे उनका पति उन्हें मारे पीटे या कुछ भी उनके साथ क्यों ना करे, पर वो घर छोड़कर नहीं जाती थी कभी भी। तो भक्तों को भी भक्ति उस चेस्ट वुमेन की तरह, उस सती स्त्री की तरह करनी है, कि चाहे उनके जीवन में जितने मर्जी बड़े दुख क्यों ना आए, पर वो भक्ति छोड़कर नहीं जाएंगे, भक्ति वो हमेशा दृढ़ बने रहेंगे। तो हम सभी को भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के प्रति, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, इन इंस्टेंट्स में बताया गया कि किस प्रकार भगवान ने ध्रुव महाराज की, पांडवों की रक्षा की, और अर्जुन की रक्षा की, रुक्मिणी जी की, मुचुकुंद की, जितने भी उनके भक्त थे सबकी रक्षा की। तो इन शास्त्रों के, दरअसल ये स्टोरीज इसलिए नहीं बताई गई ताकि हम इस पर अच्छे प्रवचन दे सकें या फिर हम अच्छे भागवत सप्ताह कर सकें इस पे, ये स्टोरीज इसलिए बताई गई हैं कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े। तो हमें चाहिए कि इन इंसिडेंट से, स्टोरी से हम लोग सीखें, ये सीख लेके जाएं और अपनी श्रद्धा को भगवान के प्रति हम लोग और आगे बढ़ाएं। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा क्योंकि आज तिरुभाव दिवस है गदाधर पंडित जी का और श्रील ठाकुर भक्ति विनोद का। तो हम तिरुभाव दिवस पे एक भजन करते हैं, जिया नीलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। तो हालांकि हम प्रवच वो भजन नहीं कर पाए, पर उसके अनुवाद को हम पढ़ लेते हैं। यहां बताया गया कि जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहां गए, मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहां हैं, सनातन कहां हैं, पतित पावन रघुनाथ दास कहां हैं, मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहां हैं, और कृष्णदास कविराज कहां हैं, महान नर्तक श्री गौरांग प्रभु एकाएक कहां चले गए, मैं अपना सिर चट्टान से मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहां पाऊंगा, गौरांग प्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो एक बार बहुत साल पहले हमारी किसी भक्त से बात हुई थी, तो वो भक्त हमें कह रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर क्यों रो रहे हैं यहां पर, कि भक्त को तो आप बताते हैं रोना नहीं चाहिए, नो हैंकरिंग नो लेमेंटेशन, तो यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर क्यों रो रहे हैं। तो दरअसल ये जो लेमेंटिंग है, जो भगवान के, जो शुद्ध भक्तों के लिए जो हम लेमेंट करते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल लेमेंटिंग होती है, ये दिव्य विलाप होता है, ये भौतिक विलाप नहीं है। जिस प्रकार कपिल देव ने बताया है, देवभूति को बता रहे थे कपिल मुनि, भगवान कपिल, कि किस प्रकार, जिस प्रकार व्यक्ति की जो भौतिक आसक्तियां होती हैं, वो उन भौतिक आसक्तियों को खत्म कर सकता है जब ये आसक्तियों को भगवान के भक्तों के चरणों में लगा ले, वो भगवान के भक्तों के संग में लगा ले। उसी प्रकार इस लेमेंटेशन को, जो हमारे अंदर हर चीज को, हैंकरिंग को तो हम लगा सकते हैं, मेटीरियल हैंकरिंग को, भौतिक हैंकरिंग को, कि हम भक्तों के लिए हैंकर करें, भक्तों के संग के लिए लालच प्रार्थना करें, पर लेमेंटेशन जो हमारा रोना है, दुख है हमारा, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, कि जो हम भौतिक चीजों के लिए रोते हैं, इसको छोड़कर हम भगवान के शुद्ध भक्त, इन भक्तों के संग के लिए रोए, कि ये भक्तों का जो संग हमारे छूट चुका है। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, वे वृंदावन में चले गए और वृंदावन में गोवर्धन के ऊपर जाकर छलांग लगाकर अपने शरीर को त्यागना चाहते थे, पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उन्हें रोका। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय से कि इस संसार की सबसे बड़ी सफरिंग्स, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो रामानंद राय ने बताया कि मैं तो केवल एक ही सफरिंग्स को जानता हूं, एक ही दुख को जानता हूं, वे दुख है भक्तों का संग छूट जाना। तो
आज श्रीला गदाधर पंडित और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो हम श्रीला मानदी स्वामी महाराज की समाधि पुस्तक से इनके बारे में पढ़ेंगे, तो कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री गदाधर पंडित के प्रति श्री गौर हरि इतने अधिक स्नेहहील थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के एक वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। गदाई व निमाई अविच्छेद्य बाल काल सखा थे। शांत विरक्त गंभीर सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल अधीर व नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। श्री कवि कर्णपुर के कथा अनुसार ब्रजलीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित ने गौरचंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण और गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते थे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ है, अर्थात गदाधर पंडित के जीवन आधार। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यान अवस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव आवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग में मधुर गीत गाने लगे। श्री गदाधर ने सुरभित वन पुष्पों की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्राभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विशोभित करते थे। वे चैतन्य महाप्रभु की शया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वे श्री चैतन्य के दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन लेप बनाते थे। गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए, जो एक मंच का कार्य कर रहा था। श्री नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं और वर्जित हुए। श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्पों द्वारा मंडित किया। श्री अद्वैत आचार्य ने आरती की। नरहरि ने चामर डुलाया। शुक्लांबर ने चंदन अर्पण किया तथा मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण प्रेम व श्रद्धा पूर्ण टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रह की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रह में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में बैठी हुई मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र अर्चा विग्रह है। यद्यपि जब भगवान चैतन्य ने प्रयाण किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। अपने प्रिय भगवान से विरह की विकट वेदन के कारण वे त्वरित वृद्ध हो गए। कतिपय अधिकारीजन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के अप्राकट्य के कुछ ही समय पश्चात श्री गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्चा विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। उनकी दंत समाधि वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। श्री श्री गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की, श्रील ठाकुर भक्ति विनोद की। दरअसल जब हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दरअसल ये जो पुस्तक महानिधि महाराज ने लिखी है, इसमें ब्रीफ में बहुत ही शॉर्ट में सभी आचारों के बारे में वर्णन किया गया है, परंतु शॉर्ट में करने के बाद भी
महाराज यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में 5 पेज से कम कुछ नहीं लिख पाए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है। हमारे जो संस्था है गौड़िया वैष्णवाचार्य, दरअसल उसका जो फाउंडेशन प्रभुपाद बताते हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर ही है। तो हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सन 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार तथा प्रचुर लेखन कार्य द्वारा उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि वे चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दशा में राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। तो दरअसल यहां पर बताया गया कि किस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की सेवा करते थे और अपने लास्ट कुछ समय में उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या क्या किया था, और अगर किसी को लगता है, किसी के अंदर अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि वो भी बाबा जी बनना चाहते हैं, या अगर कोई अभी भी अपने आप को झूठा भ्रम है किसी के अंदर, तो उनको कम से कम ये चीजें उनको करनी पड़ेंगी बाबा जी बनने के लिए जो ठाकुर भक्ति विनोद ने की थी। तो यहां बताया गया जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा की, यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत वे 4 घंटे सोते और मध्य रात्रि में उठकर भौर होने तक लिखते रहते, यह उनका दैनिक कार्यक्रम था। ठाकुर भक्ति विनोद के ने श्री जानवा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली। तदंतर उन्होंने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वत्ता तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने भी भक्ति विनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। तो यहां पर जैसे कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई पोस्ट आ जाएगी तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा या हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहां पर बता रहे हैं कि पोस्ट आने के बाद भी किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के बैलेंस को मेंटेन करके रखा, वह उतने ही विनम्र बने रहे जितने बिना किसी पोस्ट के थे। वह सर्वदा दर्पहीन, विनीत एवं सबके संग मित्रवत बने रहे। उनके घर आने वाले दान याचक सदैव प्रसन्न एवं परितुष्ट होकर जाते थे। वे सर्वहितेशी थे तथा कभी किसी से, यहां तक कि प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। वस्तुतः उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे तथा उन सबसे हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने कहा, गीतावली में प्रस्तुत निम्नोक्त उदाहरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न श्रील भक्ति विनोद एक बद जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। तो यहां पर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में बताया गया किस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद ने सिंपल लिविंग मेंटेन करते हुए भी अपनी हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग करके हाई थिंकिंग मेंटेन की। पर आजकल क्या है, उल्टा है। पहले सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होती थी, आजकल सिंपली लिविंग है नो थिंकिंग है, कि हर कोई सिर्फ जीने के लिए जी रहा है, सिर्फ दिन काट रहे हैं सब। पर ठाकुर भक्ति विनोद के जीवन में ऐसा नहीं था। तो यहां पर ठाकुर भक्ति विनोद कुछ बता रहे हैं हमारे लिए, तुम्हें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, शूद्र तथा तृण से अधिक तुच्छ मारो। वृक्ष क्षमावान बनने का प्रयत्न करो। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग कर उनका पालन पोषण करो। जीवन प्रयत्न किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, अपितु परोपकार करो और निज सुख विस्मृत कर दो। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठाशा त्याग दो और अपने हृदय को अमानी बनाओ। सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए सर्वदा सबका आदर सम्मान करो। दैन्य दया, अन्य जीवों का आदर तथा प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण का कीर्तन करने की क्वालिफिकेशन है, दैन्य दया, अन्य जीवों का आदर तथा प्रतिष्ठा वर्जन। रोदन करते हुए भक्ति विनोद प्रभु के पदकमलों में यह प्रार्थना अर्पित करता है, हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर वे एक नियमबद्ध व कठोर दैन्य कार्यक्रम का पालन करते थे। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक विश्राम, 10 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य, 4 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम, 4:30 से 7 बजे तक नाम जप, 7 बजे से 4:30 बजे तक पत्राचार, 7:30 से 9:30 बजे तक शास्त्र अध्ययन। देखिए, खाली ये नहीं बताया गया कि भक्ति विनोद ठाकुर पुस्तकें लिखते थे, लिखने के साथ साथ वे नियमित रूप से 2 घंटे शास्त्र अध्ययन के लिए भी देते थे, खुद पढ़ते थे और फिर उसके आधार पर शास्त्र लिखते थे। 9:30 बजे से 10 बजे तक स्नान एवं प्रसाद ग्रहण, आधे घंटे में केवल, और प्रसाद में क्या लेते थे, आधा किलो दूध, फल और 2 चपातियां। प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक न्यायालय का कार्य, 1 बजे से 2 बजे तक घर पर अल्पहार व विश्राम, 2 बजे से 5 बजे तक न्यायालय का कार्य, 5 बजे से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगला अनुवाद, 7 बजे से 8 बजे तक स्नान प्रसाद और प्रसाद में आधा लीटर दूध, भात और 2 चपातियां। तो उनका दैनिक कार्यक्रम बताया गया कि निद्रा केवल 3 घंटे के लिए सोते थे, 8:30 घंटे के लिए पुस्तक लिखते थे, जप अध्ययन 4:30 घंटे के लिए करते थे और अपने न्यायालय में कार्य 6 घंटे के लिए करते थे। श्रीनिवास आचार्य वृंदावन के षट गोस्वामियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, सद्धर्म संस्थापको, लोकानाम हितकारिणो। षट गोस्वामियों ने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया जिससे वे जन्म मात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सके। उसी के तुल्य ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायतार्थ अपरिमित प्रचार कार्य किया, इस कारण उन्हें सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, इसलिए एक पुस्तक भी है सप्तम गोस्वामी के नाम से। चरित्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रचार कार्य की 3 प्रमुख उपलब्धियां बताते हैं, 100 प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली की खोज की, प्रचार में नव पद्धतियां प्रवर्तित की, महाप्रभु के संदेश का वर्णन तथा उनमें पुनरुचि उत्पन्न करते ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अलौकिक भावों एवं शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण सहस्त्रों पादों व गीतों की भी रचना की। उनकी कृतियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन शिक्षामृत को प्रत्येक आधुनिक पाठक के लिए पूर्णतया सुलभ बना दिया है और उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रतिरोध्य विश्वास एवं भक्ति निहित है। ठाकुर भक्ति विनोद के एक दिवंगत शिष्य ने कहा, यहां पर उनकी पुस्तकों का नाम लिखा, श्री कृष्ण सहिता कल्याण कल्पत्रु, श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री नवद्वीप धाम महात्म्य, जैव धर्म, हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, गीतमाला, गीतावली, शरणागति तथा भगवद गीता एवं श्री चैतन्य चरितामृत पर भाष्य, ये उनकी कतिपय कृतियां हैं। गत 500 वर्ष की अवधि में चैतन्य की मूल प्राकट्य स्थली निरंकुश गंगा नदी के नीचे आवृत हो गई थी। सन 1888 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया। एक प्रसिद्ध सिद्ध संत तथा परमहंस रसिक वैष्णव श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की। इस अति मंगलमय घटना ने गौड़ मंडल से लेकर व्रज भूमि तक के समस्त गौड़िया वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। उन्होंने योगपीठ में गौरांग महाप्रभु एवं श्रीमती विष्णुप्रिया की पूजा स्थापित की। नव प्रवर्तन के भाव में सन 1896 में उन्होंने विश्वभर के विश्वविद्यालयों में श्लोकों का एक ग्रंथ श्री गौरांग लीला स्मरण भेजा, जिसमें अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमिका दी गई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु नामक एक ग्रंथ उन्होंने भेजा था। यह कृत्य पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी उत्कट अभिलाषा से उद्भूत हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति तथा एक घटना के विषय में 3 भविष्यवाणियां की हैं। पहली भविष्यवाणी यह है कि शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, तथा वे चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। कौन था वो व्यक्ति? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। दूसरी भविष्यवाणी थी, शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। आहा, वह दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस के लोग करताल एवं मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी थी, वे दिन कब आएगा जब गौर विदेशी श्री मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के संग गान करेंगे, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। वह दिन कब आएगा? तो ये तीन भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। पहली कि एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो पाश्चात्य देशों में जाकर, विश्व भर में जाकर प्रचार करेगा। दूसरा कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ऐसे देशों में जाकर भी भगवान के नाम का कीर्तन हर जगह जगह फैलेगा। और तीसरी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मायापुर में सभी हर जगह जगह से लोग इकट्ठे होंगे और सभी बंगाली वैष्णवों से गले मिलकर जय सच्चिनंदन गौर हरि का कीर्तन करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि स्वयं सन 1896 में प्रकट हुए, उसी वर्ष जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश भेजे। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ तथा श्रील सरस्वती ठाकुर की कृपा ने श्रील एसी भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद को श्री चैतन्य के शिक्षामृत तथा हरे कृष्ण कीर्तन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने हेतु सक्षम बना दिया। प्रभुपाद ने श्रील ठाकुर की तीन भविष्यवाणियों को पूर्ण कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद ने ही भक्ति विनोद ठाकुर की इन तीनों भविष्यवाणियों को पूरा किया है। दर्पहीन, सुविनीत तथा शुद्ध राधा गोविंद प्रेम से प्रदीप्त श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण श्रेय पूर्ववर्ती आचार्यों को दिया। हमें मानना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत के मूल स्त्रोत्र श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। सन 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्री धाम मायापुर में एस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए। उन्होंने 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि के जय घोष से ब्रह्मांड गुंजायमान कर दिया। सन 1914 में श्री गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्ति विनोद गौर गदाधर एवं राधा माधव की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद के आराध्य अर्चा विग्रह श्री श्री गौर गदाधर स्वानंद सुखद कुंज में आने वाले दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। राधा माधव की नित्य ब्रज लीला में भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड में उनकी भजन कुटीर में है। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद की, श्रील गदाधर पंडित की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। देखिये, मैं आप सबसे ये नहीं कहूंगा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। निश्चित रूप से हजारों गलतियां हुई होंगी, मैंने प्रयास किया था, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।